एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार और स्वागत है आप सबका एकत्र ज्ञान गोष्ठी में। मैं हूं आपकी मेजबान।
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, पर आज भी, मतलब आज की उलझी हुई जिंदगी के लिए कमाल की ताजगी और दिशा रखती है।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं रेनर मारिया रिल्के की कालजयी कृति युवा कवि को पत्र, यानी लेटर्स टू अ यंग पोएट की।
और ये सिर्फ एक युवा कवि को लिखे 10 खत नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी आवाज, अपना रास्ता, यू नो, तलाश रहा है।
और खासकर आज के दौर में जहाँ बाहर से मिलने वाली तारीफ
या आलोचना
हमें बनाने बिगाड़ने लगती है।
हाँ, सोशल मीडिया पर तो पहचान ही दूसरों की नजर से तय होती है।
एग्जैक्टली।
तो ऐसी दुनिया में रिल्के की ये आवाज हमें अंदर मुड़ने, एकांत की ताकत पहचानने और एक सच्चा, एक सार्थक जीवन जीने की हिम्मत देती है। सही कहा?
हाँ, और ये किसी कोर्स की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की सलाह की तरह है, बहुत पर्सनल।
तो चलिए मिलते हैं उस दोस्त से जिसने ये खत लिखे। कौन थे रेनर मारिया रिल्के, जरा बताइए।
रेनर मारिया रिल्के 1875 से 1926 तक प्राग में जन्मे थे। बोहेमियन ऑस्ट्रियन कवि और उपन्यासकार और 20वीं सदी के, मतलब, सबसे असरदार और गहरे जर्मन कवियों में गिने जाते हैं।
उनकी रचनाएं जैसे ड्यूनो एलिजीज या सोनेट्स टू ऑफियस, ये तो वर्ल्ड लिटरेचर का हिस्सा है।
बिल्कुल।
और सुना है उनकी जिंदगी भी काफी घुमक्कड़ी वाली रही। प्राग से निकले, पूरा यूरोप घूमा, पेरिस में महान मूर्तिकार ऑगस्ट रोडन के सेक्रेटरी भी रहे।
हाँ, बिल्कुल। और इन सब अनुभवों ने जाहिर है उनकी सोच को बहुत गहरा बनाया होगा।
और शायद यही बात रिल्के की सलाह को इतना खास बनाती है ना?
हाँ, मतलब वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो अपने दर्शन को जीते थे। उनकी सलाह किसी किताबी ज्ञान से नहीं आई है।
नहीं,
वो उनके अपने तजुर्बों से, उनके एकांत में बिताए वक्त से, कला के प्रति उनके गहरे, समझिए, एक तरह के धार्मिक समर्पण से निकली हैं।
अच्छा।
और ये खत भी, ये कोई काल्पनिक चीज नहीं है, उन्होंने फ्रांस जावर कापुस नाम के एक असली युवा सैनिक कैडेट को लिखे थे,
जिसने उनसे सलाह मांगी थी।
हाँ, जिसने अपनी कविताएं भेजकर सलाह मांगी थी। तो इसी सीधे संवाद की वजह से इनमें इतनी सच्चाई और वो अपनापन महसूस होता है।
यानी वो कोई ऊंचे आसन से उपदेश नहीं दे रहे हैं।
नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि एक हमराही की तरह, एक साथी यात्री की तरह अपने सफर के अनुभव बांट रहे हैं।
हाँ।
उनकी वो कवि वाली संवेदनशीलता और दार्शनिक नजरिए का मेल शायद यही इन पत्रों को इतना असरदार बनाता है।
एकदम सही कहा। अब अगर किताब पर आएं तो जैसा बताया, ये 1903 से 1908 के बीच लिखे गए 10 पत्रों का कलेक्शन है।
10 पत्र 5 साल के दौरान।
हाँ, कहानी शुरू होती है जब कापूस, जो एक मिलिट्री एकेडमी में पढ़ रहे थे और कवि बनने का सपना देखते थे, वो अपनी कुछ कविताएं रिल्के को भेजकर पूछते हैं क्या ये अच्छी हैं, मतलब बेसिकली वैलिडेशन मांग रहे थे।
और रिल्के का जवाब, वो तो चौंकाने वाला होता है। वो सीधे सीधे आलोचना करने से ही मना कर देते हैं।
हाँ,
वो कहते हैं कि कला की बाहरी आलोचना का कोई खास मतलब नहीं।
सही कहा।
बिल्कुल, रिल्के इस सवाल को ही पलट देते हैं। वो कापूस को सलाह देते हैं कि बाहर पूछने के बजाय अपने अंदर झांको।
अपने अंदर।
हाँ, असली सवाल ये नहीं कि कविता अच्छी है या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या लिखने की जरूरत तुम्हारे अंदर से इतनी गहराई से आती है
कि तुम उसके बिना जी नहीं सकते।
एग्जैक्टली। क्या ये तुम्हारी सुबह की पहली और रात की आखिरी सोच है? क्या तुम मर जाओगे अगर तुम्हें लिखने से रोक दिया जाए?
यहीं से किताब की यात्रा शुरू होती है, बाहरी मान्यता की इच्छा से हटकर अपनी आंतरिक आवाज को सुनने तक, है ना?
हाँ, रिल्के धीरे धीरे बाहरी दुनिया पर हमारी निर्भरता को कमजोर करते हैं और हमें अपने अंदर के संसार से मिलाते हैं।
जैसे क्या क्या बातें करते हैं वो? वो हमें एकांत को दोस्त बनाना सिखाते हैं, उदासी और शक को दुश्मन नहीं बल्कि बदलाव का संकेत मानने को कहते हैं।
अच्छा।
प्रेम को वो दो स्वतंत्र आत्माओं का एक दूसरे के अकेलेपन की रक्षा करने वाला बंधन बताते हैं। और शरीर की इच्छाओं को भी पाप नहीं बल्कि रचनात्मक ऊर्जा का स्रोत मानते हैं। तो ये बेसिकली बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने अंदर की शांत मगर ताकतवर आवाज को सुनने का अभ्यास है।
तो फिर ये सिर्फ कवियों या कलाकारों के लिए ही नहीं हुई?
नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये तो हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को ज्यादा सच्चाई और गहरे अर्थ के साथ जीना चाहता है, चाहे वो कोई बिजनेस चला रहा हो, परिवार पाल रहा हो
या बस अपनी पहचान ढूंढ रहा हो, कोई भी।
चलिए अब इन पत्रों के कुछ मुख्य संदेशों को और गहराई से समझते हैं। जैसा आपने कहा, हर पत्र का अलग से विश्लेषण करने के बजाय हम कुछ बड़े विषयों पर बात करते हैं जो इन पत्रों में बार बार उभर कर आते हैं।
ठीक है।
सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी विषय है अंदर देखो बाहर नहीं। ये तो पहले ही पत्र से शुरू हो जाता है।
हाँ, पहले ही पत्र में रिल्के बाहरी आलोचना को खारिज कर देते हैं। साफ कहते हैं कि कलाकृति या तो अच्छी होती है या नहीं होती, बाहरी राय उसे बदल नहीं सकती।
और फिर वो निर्णायक सवाल पूछते हैं,
क्या मुझे लिखना चाहिए?
हाँ, अगर जवाब अंदर से हाँ आता है, एक गहरी अनिवार्य हाँ, तो फिर बाहरी नतीजों की परवाह किए बिना जीवन को उसी जरूरत के इर्द गिर्द बुनना होगा।
और प्रेरणा का स्रोत वो भी अंदर ही है। बचपन की यादें, सपने, अपनी निजी दुनिया, वही असली स्रोत हैं।
और इसी से जुड़ा है एकांत का महत्व, है ना? रिल्के बार बार जोर देते हैं कि कलाकार को, या कहें कि हर सच्चे इंसान को, एकांत साधना सीखना होगा।
हाँ बिल्कुल, इसे अकेलेपन का डर नहीं मानना है, बल्कि इसे आत्मखोज और गहरी समझ पाने का जरूरी माहौल मानना होगा।
पत्र 5 में वो कहते भी हैं, आखिरकार जरूरी तो बस यही है, एकांत, महान आंतरिक एकांत।
और सच्ची दोस्ती या रिश्ता भी तभी संभव है जब आप पहले खुद अपने साथ अकेले रह सकें, यानी कि आप अकेलेपन से भागने के लिए रिश्ते में जा रहे हैं।
लेकिन ये एकांत साधना आसान तो नहीं होगी। इसमें शक भी आते होंगे, उदासी भी आती होगी, मुश्किल दौर भी आते होंगे।
बिल्कुल आते हैं।
रिल्के इस बारे में क्या कहते हैं? यहीं पर उनका वो धैर्य वाला दर्शन सामने आता है ना?
हाँ, और ये बहुत जरूरी पॉइंट है, पत्र 6 में वो शायद अपनी सबसे प्रसिद्ध सलाह देते हैं। जब कापूस शायद सवालों और अनिश्चितताओं से घिरे थे, रिल्के कहते हैं,
क्या कहते हैं?
वो कहते हैं, अपने हृदय में जो कुछ भी अनसुलझा है उसके प्रति धैर्य रखो और प्रश्नों को ही प्यार करने की कोशिश करो, उन्हें जियो।
प्रश्नों को प्यार करो, उन्हें जियो।
हाँ, मतलब जवाब तुरंत मत ढूंढो। जैसे पेड़ धीरज से बढ़ता है, वसंत का इंतजार करता है, वैसे ही जवाब भी सही समय पर खुद ब खुद सामने आएंगे।
और शायद तब आएंगे जब तुम उन जवाबों को जीने के लिए तैयार हो गए।
एग्जैक्टली, जब तुम खुद वो जवाब बन जाओगे अपने अनुभव से।
ये तो आज की इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली दुनिया के लिए एकदम उल्टी सोच है। मतलब अनिश्चितता में आराम से रहना सीखना।
हाँ, बहुत मुश्किल है ये प्रैक्टिस करना।
और उदासी, उसे कैसे देखें? क्योंकि उदासी तो आती है।
रिल्के उदासी को बीमारी या नाकामी नहीं मानते। पत्र 8 में वो कहते हैं कि उदासी के पल असल में बदलाव के क्षण हैं, जब कुछ नया, कुछ अनजाना हमारे अंदर प्रवेश कर रहा होता है, हम बदल रहे होते हैं।
अच्छा।
वो तो यहाँ तक कहते हैं, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है, शायद हमारे जीवन के सभी ड्रैगन्स राजकुमारियां हैं जो केवल एक बार हमें सौंदर्य और साहस के साथ कार्य करते देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं।
वाह, मतलब जिन चीजों से हम डरते हैं,
हाँ, वो ड्रैगन्स,
वो शायद राजकुमारियां हैं भेस बदल कर।
बिल्कुल, शायद वही हमारे विकास का सबसे बड़ा मौका है, बस उन्हें समझने और हिम्मत से सामना करने की जरूरत है।
ये तो मुश्किलों को देखने का नजरिया ही बदल देता है पूरी तरह से। डर को दुश्मन नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज समझना जिसे शायद हमारे प्यार और साहस की जरूरत है। अच्छा, रिल्के ने प्रेम और रिश्तों पर भी कुछ खास कहा है। सुना है उनका नजरिया काफी चुनौतीपूर्ण है।
हाँ बिल्कुल है। पत्र 7 में वो कहते हैं कि अक्सर जो युवा प्रेम होता है ना, वो एक दूसरे में खो जाने, अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश होता है, मर्ज हो जाने की इच्छा। जबकि सच्चा परिपक्व प्रेम ज्यादा मुश्किल और ज्यादा महान काम है। ये दो लोगों का विलय नहीं, बल्कि रिल्के के शब्दों में, दो एकांतों का एक दूसरे की रक्षा करना, सीमा बनाना और अभिवादन करना है।
दो एकांत एक दूसरे की रक्षा करते हैं।
हाँ, यानी दो मजबूत आत्मनिर्भर लोग जो एक दूसरे के अकेलेपन का, उनकी इंडिविजुअलिटी का सम्मान करते हैं और उसे सुरक्षित रखते हैं, एक दूसरे को बदलने की कोशिश नहीं करते।
ये आसान नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये जीवन भर का काम है, रिल्के कहते हैं। बिल्कुल अलग हटकर कहते हैं, वो कहते हैं कि शारीरिक इच्छाएं कोई पाप या शर्म की बात नहीं है।
नहीं,
वो जीवन की और रचनात्मकता की गहरी ऊर्जा का हिस्सा है। इन्हें भी सम्मान और जिम्मेदारी के साथ जीना चाहिए। शरीर और आत्मा अलग नहीं, जुड़े हुए हैं। ये बहुत रेडिकल विचार था उस समय के लिए।
और आखिर में ये सब करके मिलेगा क्या? मतलब ये कलात्मक रास्ते पर चलने का, इस अंदरूनी सफर का क्या मतलब है? पत्र 9 और 10 शायद इसी पर रोशनी डालते हैं।
हाँ, पत्र 9 में वो स्वीकार करते हैं कि कला का रास्ता अनिश्चितताओं से भरा है, आसान नहीं है। लेकिन अगर वो अंदर की जरूरत सच्ची है, तो यही अकेला रास्ता है जो सच्ची संतुष्टि दे सकता है। ये एक तरह की आध्यात्मिक खोज बन जाती है, जहां अपने काम में डूबकर इंसान किसी गहरे सत्य या कह लीजिए ईश्वर से जुड़ता है।
और आखिरी पत्र, वो तो कई साल बाद लिखा गया था।
हाँ, पत्र 10 जो कई साल बाद लिखा गया, वो एक दोस्त की तरह हौसला देता है, एक तरह से समापन है। वो आशा करते हैं कि कापूस ने स्थिरता और अर्थ पाया है,
और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं।
हाँ, कि चाहे रास्ता कोई भी चुनो, जरूरी है शांति और लगन से अपने काम और जीवन को जीना। सच्ची कला सिर्फ कविता लिखना नहीं, बल्कि जिंदगी को सचेत होकर जीना है।
अंदर का बदलाव बाहरी कामयाबी से ज्यादा मायने रखता है।
बिल्कुल, स्वयं से बड़ी किसी चीज की सेवा करना, उसमें आनंद खोजना।
कमाल है, मतलब एक सदी पहले लिखे गए ये खत आज भी कितने कितने प्रासंगिक लगते हैं।
बिल्कुल।
अगर हमें इन पत्रों से कुछ सबसे जरूरी संदेश या निष्कर्ष निकालने हों तो वो क्या होंगे? मेरे लिए शायद सबसे पहला है, भाई अपनी अंदरूनी आवाज पर भरोसा करना सीखो, बाहरी दुनिया की राय से ज्यादा।
मैं सहमत हूँ, एकदम पहला पॉइंट यही है। और दूसरा मेरे लिए, एकांत को गले लगाओ। ये डरने की चीज नहीं, बल्कि खुद को जानने और अपनी क्रिएटिविटी को जगाने की जगह है। और आज के शोर भरे माहौल में शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी है।
हाँ, ये बात तो है। तीसरा, धैर्य रखो और प्रश्नों को जियो। हर चीज का जवाब तुरंत नहीं मिलता, विकास धीरे धीरे प्रकृति की तरह होता है, प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखो।
चौथा, मुश्किलों और उदासी से भागो मत, उन्हें समझो। वो शायद भेज बदल कर आए वाले मौके हैं, हमारे विकास का हिस्सा हैं। वो रिल्के के ड्रैगन वाली बात?
हाँ बिल्कुल, कि वो शायद राजकुमारियां हैं। और पांचवा, सच्चा प्यार दो लोगों का एक दूसरे में खो जाना नहीं, बल्कि दो एकांतों का एक दूसरे का सम्मान और सुरक्षा करना है, रिश्तों में अपनी और दूसरे की आजादी बनाए रखना।
इन संदेशों को अगर हम आज के भारतीय संदर्भ में देखें तो ये और भी गहरे लगते हैं।
कैसे, कुछ उदाहरण देंगे?
जैसे यहाँ अक्सर परिवार या समाज का दबाव होता है कि क्या करियर चुने, कैसे जिए, बहुत एक्सपेक्टेशंस होती हैं।
हाँ वो तो है।
तो रिल्के की सलाह हमें अपनी मर्जी और अंदर की आवाज सुनने का साहस देती है। वो कहती है कि आपकी लाइफ आपकी है।
और शहरों की भागदौड़ और शोर शराबे के बीच सच में अपने लिए एकांत के कुछ पल निकालना, शांत होकर सोचना, कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है।
बिल्कुल। और रिश्तों में जहां अक्सर उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं एक दूसरे में घुल मिल जाने की, वहां एक दूसरे के स्पेस का सम्मान करने की बात कितनी अहम है, इंडिपेंडेंट रहना।
सही कहा। इन पत्रों में ऐसी कई पंक्तियां हैं जो दिलो दिमाग पर छा जाती हैं। कुछ खास पंक्तियां या विचार जो आपको याद आते हैं, जो लगता है कि सुनने वालों को याद रखने चाहिए?
मुझे वो सवाल हमेशा याद रहता है जो आपने भी कहा था, अपने भीतर जाओ, अपने आप से पूछो क्या मुझे लिखना चाहिए। ये सिर्फ लिखने के लिए नहीं, जिंदगी के किसी भी बड़े फैसले के लिए कसौटी बन सकता है। आपकी असली जरूरत क्या है?
और वो धैर्य वाली बात, अपने हृदय में जो कुछ भी अनसुलझा है उसके प्रति धैर्य रखो और प्रश्नों को ही प्यार करने की कोशिश करो। ये मुझे याद दिलाता है कि अनिश्चितता के साथ भी जिया जा सकता है, और शायद ज्यादा खूबसूरती से। इट्स ओके नॉट टू हैव ऑल द आंसर्स।
प्रेम की वो परिभाषा भी कमाल की है। प्रेम इसमें निहित है कि दो एकांत एक दूसरे की रक्षा करें, सीमा बनाएं और अभिवादन करें। रिश्तों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, कितना सम्मान है इसमें।
और हाँ, वो ड्रैगन वाली पंक्ति तो भूल ही नहीं सकते। शायद हमारे जीवन के सभी ड्रैगन राजकुमारियां हैं जो केवल एक बार हमें सौंदर्य और साहस के साथ कार्य करते देखने की प्रतीक्षा कर रही हैं। ये मुश्किलों में भी उम्मीद और हिम्मत जगाती है, पॉसिबिलिटी दिखाती है।
एक और थी, शायद आपने पहले बताई थी, अपने साथ सब कुछ होने दो, सुंदरता और आतंक, बस चलते रहो, कोई भी भावना अंतिम नहीं है।
हाँ, ये जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करने की ताकत देती है। एवरीथिंग पासेस।
ये विचार सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, है ना? इन्हें हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार भी सकते हैं।
कैसे?
बिल्कुल, जैसे अगर कोई रचनात्मक काम करता है, लेखक, कलाकार, म्यूजिशियन या कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, तो रिल्के की सलाह उसे अपनी मौलिकता बनाए रखने में मदद कर सकती है।
हाँ, आलोचना से निराश ना होने में और सफलता के पीछे भागने के बजाय अपने काम की गहराई पर ध्यान देने में,
प्रोसेस पर फोकस।
मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से भी ये बहुत फायदेमंद है, चिंता कम करने के लिए, प्रश्नों को जीना। उदासी या मुश्किल भावनाओं को बीमारी न समझकर उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखने की कोशिश करना, रोज कुछ मिनट का एकांत आत्मचिंतन के लिए निकालना।
रिश्तों में ये हमें ज्यादा समझदार और सम्मानजनक साथी बना सकता है, दूसरे की निजता का ख्याल रखना।
हाँ, निर्भर होने के बजाय एक दूसरे का सहारा बनना और एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करना, स्पेस देना।
और आज के डिजिटल दुनिया में तो रिल्के मानो चीख चीख कर कह रहे हो, रुको, थमो, अंदर देखो।
सही कहा।
लगातार दूसरों की जिंदगी देखने और तुलना करने के बजाय अपने अंदर की दुनिया को समृद्ध करो। शायद रोज कुछ देर के लिए स्क्रीन से दूर रहना, एकांत में बैठना बहुत जरूरी है।
बच्चों की परवरिश और शिक्षा में भी ये सोच काम आ सकती है। नतीजों से ज्यादा कोशिश को सराहें। हाँ, उनकी जिज्ञासा को जगाएं, उन्हें सवाल पूछने दें, रटने पर नहीं समझने पर जोर दें और उनके अंदर की दुनिया को पनपने का मौका दें।
संक्षेप में, जिंदगी को बाहर से अंदर की ओर मोड़ने का अभ्यास है, फोकस शिफ्ट करने की बात है।
मेरे लिए इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी सीख यही है कि असली ताकत और दिशा बाहर से नहीं हमारे अंदर से आती है। बस जरूरत है हिम्मत, धैर्य और ईमानदारी से अपने अंदर झांकने की। रिल्के हमें यही करना सिखाते हैं।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये रही कि कैसे रिल्के मुश्किल भावनाओं जैसे उदासी, शक, डर को नेगेटिव नहीं मानते हैं।
हाँ।
बल्कि विकास के लिए जरूरी मानते हैं। ये जिंदगी को पूरी तरह से स्वीकार करने का नजरिया है, उसके अंधेरे और उजाले दोनों के साथ, होल हार्टेडली।
बिल्कुल, ये किताब महज एक किताब नहीं, एक साथी है, एक गाइड है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे सार्थक यात्रा अपने अंदर की यात्रा है।
और शायद रिल्के का अंतिम संदेश यही है कि अपने अंदर की इस यात्रा पर ईमानदारी से चलना ही, वही सबसे बड़ी कला है, वही सबसे सार्थक जीवन है।
इसी सोच के साथ शायद हमें अपने आप से पूछना चाहिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में हम अपने आंतरिक एकांत को कैसे बचाए रख सकते हैं और उसकी सुन सकते हैं। ये सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं।
बिल्कुल,
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।